in the end. तो शुरू करें प्रसाद हो गया सबका प्रसाद तो हो गया है तो कैसे नहीं आए अभी तक बहुत सारे भक्त हैं नहीं आए एक ब्रज का भजन गाएंगे क्योंकि गिरधर जी के धाम पे हम हैं। आपने सुना होगा जब हम श्रीनाथ जी का दर्शन कर रहे थे तो सब लोग बोल रहे थे गिरिराज धारण की तो गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले श्रीनाथ जी गोवर्धन नाथ गिरिधारी इनके चरणों में भजन गाएंगे। ब्रजभूमि में ये भजन गाया जाता है तो मेरे पीछे पीछे आप गा सकते हैं। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी प्यारे। मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी। गिरिधारी बनवारे गिरिधारे बनवारे मनमोहन कुंज बिहारे प्यारे आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी। मनमोहन कुंज बिहार मनमोहन कुंज बिहारे प्यारे आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी। बहुत बार है टेर लगाई बहुत बार है टेर लगाई करुणा नैनन में घिर आई करुणा नैनन में घिर आई ये रोया
दुखारे प्यारे आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी ये रोया एक दुखारे ये रोया ये रोया एक दुखारे प्यारे आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी मेरे गिरिधारे बनवारे मन मोहन कुंज बिहारे प्यारे आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी मग जो हट अखिया पथराई मग जो हट अखिया पथराई दर दर पे माया टकराई दर दर पे माया टकराई ये देखो दशा हमारे प्यारे आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी ये देखो दशा हमारे प्यारे आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी गिरिधारे बनवारे
बनवारे
मन मोहन कुंज बिहारे प्यारे आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी थोड़ी कृपा इधर बरसाओ थोड़ी कृपा इधर बरसाओ प्रेम बूंद प्यासे को प्याओ प्रेम बूंद प्यासे को प्याओ मैं प्यासा एक भिखारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी मैं प्यासा एक भिखारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी गिरिधारे बनवारे मनमोहन कुंज बिहारे प्यारे आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी भेंट नहीं मैं कुछ भी लाया भेंट नहीं मैं कुछ भी लाया खाली हाथ तेरे दर आया खाली हाथ तर तेरे दर आया मैं तेरा प्रेम पुजारे प्यारे आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी मैं तेरा मैं तेरा प्रेम पुजारे प्यारे आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी गिरिधारे बनवारे मनमोहन कुंज बिहारे प्यारे आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी प्यार करो चाहे ठुकरा दो प्यार करो चाहे ठुकरा दो पास बुलाओ दूर भगा दो पास बुलाओ दूर भगा दो मैं सब विधे शरण तिहारे प्यारे आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी मैं सब विधे सब विधि शरण तिहारे प्यारे आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी मेरे मन मंदिर में एक बार तुम आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी गिरिधारे बनवारे मनमोहन कुंज बिहारे प्यारे आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी आ जाओ गिरिधारी प्यारे आ जाओ गिरिधारी हरे कृष्णा। भजन अच्छा लगा आपको? ब्रज भजन है ये। हाँ नहीं, ये ब्रज भाषा है, ब्रज में किसी ने लिखा है, ब्रज के कोई भक्त ने लिखा है। अच्छा, ये शरण तो है, मैं सब विधि शरण तिहारी तिहारे, लेकिन ये कोई ब्रज का है। आप समझ गए, भाषा बड़ी सरल थी। केवल एक बार शायद मगजो हट अखियां पथराई, मतलब मैं रास्ते में देख रहा हूँ, जिस रास्ते से आपकी प्रतीक्षा है कि आप आएंगे आएंगे आएंगे, परंतु अभी तक आए नहीं, आप आ रहे हैं, देख रहे हैं। दर दर पे माया टकराइए, तो आप समझ गए, हर पल अनुभव सबको है, हर पल पे माया टकराती रहती है। तो ऐसे बहुत सुंदर भजन है ब्रज में, ब्रज भाषा में, और साधारण ऐसे बोली में भी। भक्ति में संगीत का महत्व बहुत है, क्योंकि संगीत के द्वारा अपने भाव को सुचारू रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए आप देखेंगे जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं भिन्न भिन्न संप्रदायों में, उन सब ने संगीत का प्रयोग किया है। और लगभग 400, 500, 600 साल पहले एक भक्ति का विस्फोट हुआ भारत में। भारत के हर एक कोने में बड़े बड़े भक्त प्रकट हुए, और उन सब ने संगीत के द्वारा ही अपने हृदय के भावनाओं को व्यक्त किया। यहाँ गुजरात में नरसिंह मेहता जी थे। नरसिंह मेहता जी का भजन था जो गुजराती में है, लेकिन बचपन में भी हमने सीखा था, वो महात्मा गांधी जी ने स्वीकार किया था, इसलिए वो काफी लोकप्रिय हो गया था। वैष्णव जन ते तेने कहिए, पीर पढ़ाए पढ़ाए जाने रे, इत्यादि। तो यहाँ गुजरात में नरसिंह मेहता हुए, राजस्थान में यहाँ मीराबाई हुई। मीराबाई ने चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में भी एक भजन लिखा है, कभी हो सकता है तो वो भी गाएंगे। और फिर महाराष्ट्र में तुकाराम हुए, उधर उत्तर प्रदेश में सूरदास हुए, और भी कई हुए। बंगाल उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु हुए, और उनके संप्रदाय थे तो और कितने सारे भक्त हैं। उधर कर्नाटक में पुरंदर दास हुए, और आंध्र प्रदेश में रामदास हुए, और कितने सारे भारत भर में, तमिलनाडु में आलवर हुए पहले, बहुत पहले, फिर उसके बाद में और भी कई आए, त्यागराज इत्यादि बहुत से आए। तो ये सब प्रसिद्ध है अपने संगीत के लिए, क्योंकि संगीत के माध्यम से उन्होंने भक्ति अपनी प्रकट की। इसलिए संगीत के बिना भक्ति कुछ खाली खाली सी लगती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया, युग धर्म है नाम संकीर्तन। वैसे देखा जाए तो हरे नाम अयव श्लोक में इतना ही कहा गया है कि हरि नाम हमें लेना चाहिए, परंतु नाम संकीर्तन में ये संगीत भी जुड़ा जाता है। जब हम संकीर्तन करते हैं तो संगीतमय ढंग से करते हैं, इसलिए नाम संकीर्तन ये बहुत महत्वपूर्ण है। संगीत के माध्यम से हमारी भावनाएं बहुत अच्छी तरह से, आसानी से प्रकट होती हैं। सूखा सूखा नहीं लगता। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं कि जब हम विभिन्न रागों के द्वारा हरि नाम लेते हैं तो भक्ति का रस बढ़ जाता है। इसलिए हमारे भक्त भी अभी बहुत प्रवीण हो गए हैं, विभिन्न रागों में विभिन्न धुनों में कीर्तन करते हैं, हरि नाम या हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, इसलिए हरि नाम और भी रसमय हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिचनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। माधवेंद्रपुरी की कथा हम कल कर रहे थे, जब गोपाल जी की या श्रीनाथ जी की चर्चा होती है तो अवश्य श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि माधवेंद्रपुरी ही थे जिनके कारण गोपाल जी पुनः प्रकट हुए। माधवेंद्रपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु थे और काफी समय तक गोवर्धन में रह के उन्होंने गिरिराज जी और गोपाल जी की सेवा की। फिर जैसा कि हम कल चर्चा कर रहे थे, वो चंदन लाने के लिए गोपाल जी के आदेश के अनुसार दक्षिण में गए। वहां पे जगन्नाथपुरी में जाकर चंदन लेकर आए वापस गोपाल जी की सेवा के लिए, और फिर वहीं पे गोपीनाथ के शरीर पे उन्होंने वो चंदन का लेप लगाया। माधवेंद्रपुरी के बाद आए श्रीपाद ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के शिष्य थे श्री चैतन्य महाप्रभु। संन्यास लेने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आना चाहते थे, अनेकों बार प्रयास किया परंतु किसी कारणवश नहीं आ पाए। अंततः एक बार आ ही गए। प्रयाग वाराणसी इत्यादि होकर जब पहुंचे तो सर्वप्रथम मथुरा में आए, विश्राम घाट में आके स्नान किया, फिर केशव जी के मंदिर में गए जहां श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, और वहां केशव देव का दर्शन करके भाव विभोर हो गए, कीर्तन और नृत्य करने लगे। उनके कीर्तन को सुनकर उनके नृत्य को देखकर एक वहां के स्थानीय ब्राह्मण सनोड़ीय ब्राह्मण उनके साथ आए, वो भी कीर्तन नृत्य करने लगे। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, विस्मित होकर महाप्रभु के कीर्तन को देख रहे थे और सुन रहे थे। सब आपस में बात करने लगे कि ऐसा कीर्तन और ऐसा नृत्य हमने कभी नहीं देखा है, ये अलौकिक है। उधर सनोड़िया ब्राह्मण से बात कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु कि आप कौन हैं, आपके अंदर जो भाव दिखाई पड़ रहे हैं इससे हमें पता चलता है कि आपकी भक्ति कुछ विशेष है। तो उस सनोड़िया ब्राह्मण ने कहा, वैसे श्रेय जाता है मेरे गुरुदेव श्रील माधवेंद्र पुरी को। जब वो यहां पर आए थे मथुरा में, तो मुझ पतित पर उन्होंने कृपा की थी, मेरे घर में प्रसाद भी पाया था उन्होंने, और उन्होंने गोपाल जी की मूर्ति ढूंढ निकाली और गोवर्धन के ऊपर स्थापित की, और आज भी गोपाल जी की मूर्ति गोवर्धन के ऊपर है और वहां पे उनकी सेवा पूजा हो रही है। परंतु आपका परिचय क्या है? मुझे ऐसे लगता है आपके भक्ति के लक्षणों को देखकर कि निश्चित ही आपका भी कोई संबंध माधवेंद्रपुरी से हुआ होगा, अन्यथा ऐसे भक्ति के लक्षण संभव नहीं है। तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना परिचय दिया कि माधवेंद्रपुरी मेरे परम गुरु हैं और ये हमारा निकट का संबंध है। तो फिर सनोडिया ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, महाप्रभु को वो यमुना के तट पे जो 24 प्रमुख घाट हैं उनमें ले गए, जो प्रमुख वन हैं ब्रजभूमि में 12 वन हैं, इनके अतिरिक्त भी और कई वन हैं, उनमें सनोडिया ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को ले गए, भ्रमण करते रहे। ऐसे बताया जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करते थे तो 24 घंटे प्रेमावेश में रहते थे, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न रहते थे। परंतु जब जगन्नाथपुरी से वो वृंदावन की ओर निकल पड़े तो उनका प्रेम 100 गुना ज्यादा बढ़ गया या 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। जब वो मथुरा पहुंचे तो उनका प्रेम और भी बढ़ गया, 1000 गुना बढ़ गया। और जब वो ब्रजभूमि के वनों में भ्रमण कर रहे थे तो उनका कृष्ण प्रेम 1,00,000 गुना बढ़ गया। तो हम कल्पना कर सकते हैं, शायद कल्पना नहीं भी कर सकते हैं, मुश्किल है कल्पना करना कि चैतन्य महाप्रभु का भाव क्या हुआ होगा। ऐसे कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर, मस्त होकर वो कीर्तन और नृत्य करते हुए घूम रहे थे ब्रजभूमि में। बाह्य चेतना उनकी ज्यादा नहीं थी, कभी गाय मिल जाते, कभी हिरण मिल जाते, उनसे आलिंगन कर लेते, कभी तोतों के साथ बात कर ले तो उनकी बातचीत समझ लेते, वो भी राधा कृष्ण की चर्चा करते। फिर आखिर वो राधा कुंड आए, आरीट ग्राम। आज वो गांव राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। आरीट ग्राम अर्थात अरिष्टासुर का गांव, जहां पे अरिष्टासुर का वध हुआ था श्री कृष्ण के द्वारा, और उसके बाद वहां राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ। राधा कुंड और श्याम कुंड ये संपूर्ण सृष्टि में सबसे पावन स्थान माने जाते हैं। परंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां के लोगों से पूछा कि ये राधा कुंड कहाँ है, तो किसी को पता नहीं था। वैसे उन्होंने सुना था कि ऐसे कुछ है कहीं, कारो सरोवर और गौरव सरोवर, ऐसे कुछ है, वो कारो गौरव इनका कुछ है, कारो मतलब काले जो हमारे कृष्ण हैं उनका कुंड कहीं है, राधा रानी का भी है कहीं कुंड, लेकिन उनको ज्यादा कुछ पता नहीं था। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। तो खेत में उन्होंने देखा और समझ लिया कि यही राधा कुंड है। चावल उग रहा था तो उस जल में वो लौटने लगे, स्नान करने लगे। सारे गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये सन्यासी ऐसे क्यों कर रहे हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने सारे दुनिया के लिए ये घोषित कर दिया कि ये राधा कुंड है और ये श्याम कुंड है। तो मोर रूपी गोवर्धन के ये दो आंखें मानी जाती हैं, राधा कुंड और श्याम कुंड। तो फिर गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे महाप्रभु, परिक्रमा करते करते फिर चले आए हरिदेव जी के मंदिर में। हरिदेव जी का मंदिर मानसी गंगा के तट पे है, भगवान नारायण का स्वरूप है। भगवान का दर्शन किया, कीर्तन किया, ब्रह्मकुंड में स्नान करके पुनः रात को हरिदेव के मंदिर में ही रहे और गोवर्धन की परिक्रमा पुनः प्रातः काल में प्रारंभ की। और परिक्रमा करते करते वो गोविंद कुंड में आ पहुंचे। जब हरिदेव के मंदिर में रात में विश्राम कर रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि गोपाल जी, गोपाल राय का दर्शन तो मैं करना चाहता हूं, परंतु गोपाल राय तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर हैं और मैं तो एक साधारण कृष्ण भक्त हूं, मैं तो गोवर्धन के ऊपर चढ़ नहीं सकता क्योंकि गोवर्धन तो साक्षात श्री कृष्ण हैं, तो मैं गोपाल राय का दर्शन कैसे करूंगा। वही गोपाल राय जो आज यहां श्रीनाथ जी के रूप में विराजमान है। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे सोचते सोचते फिर सो गए। गोपाल जी ने उनकी इच्छा जान ली तो सुमन सरोवर, जो आज कुसुम सरोवर के नाम से जाना जाता है, उस समय सुमनह सरोवर कहा जाता था, सुमनस। तो वहां से जाके फिर हरिदेव के मंदिर में जब गए थे, फिर वहां से जब परिक्रमा चालू की तो चलते चलते वो गोविंद कुंड में आए, जहां पर माधवेंद्र पुरी भी बैठे थे, जहां पे गोविंद जी का आदेश उनको मिला था। तो वहां अनियोर गांव पास में है और अनियोर गांव से ऊपर मंदिर बहुत नजदीक है, परंतु गांव में सब लोग कह रहे थे कि गोविंद जी तो यहां नहीं है, गोपाल जी तो यहां पर नहीं है। क्यों नहीं थे? कि भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति सूझी श्री चैतन्य महाप्रभु को उनका दर्शन देने के लिए। एक आदमी आया अनियोर गांव में और आके कहने लगा सारे गांव वालों को, अरे खबरदार, सावधान, अब तुर्की जो ये यवन सैनिक हैं अब बस आने ही वाले हैं, हमें ताजा खबर मिली है कि यह हमला करने के लिए वो आ रहे हैं, तो जल्दी से आप निकल पड़ो यहां से और एक भी व्यक्ति को अपने घर में रहना नहीं चाहिए क्योंकि ये लोग लूटेंगे, मारेंगे, खून करेंगे और गोपाल जी को भी यह रहना नहीं चाहिए क्योंकि मंदिर वो लोग तोड़ डालेंगे, गोपाल जी को भी हानि पहुंचा सकते हैं। तो दावनल की तरह खबर सारे अनियोर गांव में फैल गई। तो जल्दी जल्दी सारे ब्रजवासियों ने अपने बोरी बिस्तर इकट्ठा कर लिया और निकल पड़े। उन दिनों में जीवन बहुत सरल हुआ करता था, गृहस्थों को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता, बस थोड़े समय में थोड़े बोरी बिस्तर बर्तन बांध लिए निकल पड़े। आजकल कितने सारे चीजें हैं लो जाने पड़ती हैं, बड़े बड़े मशीन यंत्र आदि इतने सारे घर में होते हैं, लेकिन उन दिनों में ब्रजवासियों का जीवन बहुत सरल हुआ करता था। तो उस समय उन्होंने सोचा कि गोपाल जी के साथ क्या किया जाए। तो वहां पास में एक गांव है जिसको गांठुली गांव कहते हैं, तो उस गांठुली गांव के एक ब्राह्मण के घर में उन्होंने गोपाल जी को रख दिया। ये गांठुली गांव का नाम पड़ा है गांठ इस शब्द से। लीला हुई ये कि एक बार श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण जब उस स्थान में थे तो दोनों के कपड़ों की गांठ बांधकर उन्होंने अपने आप को ढक लिया था। और आपको पता है कि विवाह के समय वर और वधु दोनों के कपड़े भी गांठ में बांधे जाते हैं, तो उनके उन दोनों के कपड़े जो हैं गांठ में बांधी गई थी, इसलिए उस गांव का नाम हुआ गांठुली गांव। आज भी है वहां अनियोर के पास। तो वहां एक ब्राह्मण के घर में रहे, फिर वहां से किसी दूसरे घर में और कहीं तीसरे घर में, कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में, कभी इस घर में तो उस घर में, ऐसे कई दिनों तक गोपाल जी घूमते रहे अपने भक्तों के घर में। कहीं एक स्थान में उनको लंबे समय के लिए वो रखना नहीं चाहते थे, डर रहे थे कि कहीं ये तुर्की लोग आ जाएं, आक्रमण करें तो बहुत खतरा है। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए गोविंद कुंड में, तो उस समय गोपाल जी गोवर्धन के ऊपर नहीं थे, वो चले गए थे गांठुली गांव में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत गांठुली गांव चले गए और वहां उस ब्राह्मण के घर में जाके उन्होंने जी भर से दर्शन किया। पूरे 3 दिन गांठुली गांव में रहकर उन्होंने दर्शन किए गोपाल जी के, और 4th दिन श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से निकल पड़े अपनी परिक्रमा के लिए आगे और अन्य स्थानों के लिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि इस तरह गोपाल जी ने चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ण की, एक निमित्त उन्होंने बनवाया। वैसे अफवाह था, अफवाहों से तो हम परिचित हैं इस भौतिक जगत में, खास करके कलयुग में अफवाहें तो बहुत होती हैं। बल्कि कलयुग का दूसरे शब्द में परिभाषा की जाए तो अफवाहों का युग है, हर बात में अफवाह फैलती रहती है। तो ये जानबूझकर भगवान की योजना से हुआ कि ये व्यक्ति आया, अरे अरे वो मुसलमान सैनिक आ रहे हैं, भागो भागो, सब लोग भाग पड़े। और काफी समय बाद रूप गोस्वामी भी अन्य गोस्वामियों के साथ जब आए थे गोवर्धन, तब भी ऐसे ही हुआ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि रूप गोस्वामी जब बहुत वृद्ध हो चुके थे तो अब वो ज्यादा पैदल नहीं चल सकते थे, और गोवर्धन आना भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। वो भी गोपाल जी का दर्शन करना चाहते थे, परंतु अब उतनी दूर चल नहीं पाते थे और न ही वो गोवर्धन के ऊपर चल सकते थे, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु नहीं चढ़े थे तो रूप गोस्वामी कैसे चढ़ सकते हैं। और हम सब तो रूपानुग हैं, रूप गोस्वामी के अनुयायी हैं, इसलिए हम तो बिल्कुल चढ़ते ही नहीं हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत सावधान थे इस बारे में। जब गोवर्धन को उन्होंने पहली बार देखा तो दंडवत प्रणाम तो किया, और फिर वहां की एक शिला थी जो पड़ी हुई थी, गोवर्धन शिला, उसका आलिंगन करके भाव विभोर होकर प्रेमावेश में आ गए। और फिर गोवर्धन की ओर देखकर जब गोपाल जी के पास फिर आए गांठुली गांव में, और चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल जी का दर्शन किया, उनका बायां हाथ ऊपर, तो उन्होंने उस बायां हाथ की प्रशंसा की, क्योंकि उस बायां हाथ के द्वारा ब्रजवासियों की रक्षा हुई थी। वामस तामस राक्षस ताप तामर साक्षस्य भुज दंड सपातु वह क्रीड़ा कंदुकताम येन नीतो गोवर्धनो गिरिहि। इस श्लोक का अर्थ ये है कि गोवर्धन को उठाने वाले श्री कृष्ण, जिनके कमल नयन हैं तामरस अक्षस्य, तामरस अर्थात कमल, अक्ष अर्थात आंखें, तो जिनकी आंखें खिले हुए कमलों की तरह हैं, उन श्री कृष्ण के बाएं हाथ से वामह मतलब बाया, भुज दंडह अर्थात उनका हाथ, तो उन श्री कृष्ण का जो बाया हाथ है सपातु वह, वो आपकी रक्षा करे। श्री कृष्ण के का बाया हाथ आपकी रक्षा करे, क्योंकि इसी बाएं हाथ से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। नीतो गोवर्धनो गिरिहि, कैसे धारण किया था? क्रीड़ा कंदुकताम येन, जैसे मानो कोई बच्चा एक
खेल खेल में खिलौना उठा लेता है, तो वैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ से एक खिलौने की तरह है इस विशाल गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था। बाएं हाथ क्यों? क्योंकि भगवान के लिए बाएं हाथ का खेल है। साधारण भाषा में हम कहते हैं ना कि जब हमारे लिए कोई काम बहुत आसान होता है, हम कहते हैं हमारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। अब बाएं हाथ की बात तो दूर है, भगवान के लिए किसी भी हाथ का खेल नहीं। भगवान तो सोचेंगे जो हो सकता है, फिर भी मनुष्य लीला कर रहे हैं, इसलिए भगवान ऐसे बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। और न केवल बाएं हाथ, बाएं हाथ की सबसे कमजोर उंगली है छोटी उंगली, तो उस छोटे उंगली के ऊपर भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया, ये बताने के लिए कि शरीर का जो सबसे कमजोर हिस्सा होता है उससे बड़े आसानी से भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया। 7 दिन और 7 रात लगातार, तो वो हाथ चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं आपकी रक्षा करे। ऐसी सुंदर प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु ने की थी वहां पर, तो गिरिराज पे चढ़े नहीं थे चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी भी चढ़े नहीं, परंतु जिस तरह गोपाल जी ने युक्ति की थी चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने के लिए, उसी तरह गोपाल जी ने युक्ति की रूप गोस्वामी और उनके साथ में जो गोस्वामी गण थे उनको दर्शन देने के लिए। यदि ऐसा नहीं करते तो वो कभी भी गोपाल जी का दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि जो भी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं वो कभी गोवर्धन के ऊपर चढ़ने वाले तो थे नहीं, तो कैसे दर्शन करते। तो गोपाल जी ने बड़ी कृपा की, गोपाल जी स्वयं उतर के आए। दोबारा एक अफवाह फैल गई, मुसलमान आ रहे हैं, यवन आ रहे हैं, सैनिक आ रहे हैं, तुर्की लोग आ रहे हैं, तो इस बार गोपाल जी चले आए मथुरा में। मथुरा में वल्लभाचार्य के पुत्र थे जिनका नाम था विठ्ठलेश्वर या विठ्ठलनाथ गोसाई, तो उनके घर में 1 महीने गोपाल जी रहे। तो खबर पहुंची रूप गोस्वामी को, तो रूप गोस्वामी गए वहां पर, उनके साथ में थे जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी और अनेक ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे वृंदावन में रहने वाले, वो सब रूप गोस्वामी के साथ में गए। मथुरा में सभी लोग 1 महीने तक रहे। पूरे 1 महीने तक उन्होंने गोपाल जी का दर्शन किया जी भर के, और फिर गोपाल जी पुनः अपने मंदिर में वापस चले गए गोवर्धन के ऊपर। अब गोपाल जी गोवर्धन के ऊपर से इतनी दूर यहां आए कैसे? माधवेंद्रपुरी जब गोवर्धन छोड़ के चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए, उसके बाद वल्लभाचार्य जो कि विष्णु स्वामी संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं, ये प्रांत, इस प्रांत में गुजरात राजस्थान आदि में उनके अनुयायी बहुत हैं, वल्लभ संप्रदाय के भक्त अनेक हैं। उनका मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम, बाल गोपाल की उपासना करते हैं। तो उनको आदेश मिला गोपाल जी के द्वारा, जबकि वो झारखंड में थे, कि आप गोवर्धन में जाके मेरी सेवा की जिम्मेदारी संभालो। अब माधवेंद्रपुरी वहां पर नहीं है, आपको स्वीकार करना होगा। तो बड़े आनंद से वल्लभाचार्य वहां पहुंचे, उन्होंने ब्रजवासियों के साथ में व्यवस्था कर ली अच्छी तरह से, कैसे सेवा पूजा और जारी रखी जाए। काफी समय तक उन्होंने पूजा की जिम्मेदारी ली। उनके कई पुत्र थे, उनमें से जो विठ्ठलेश्वर या विठ्ठलनाथ जो गोसाई के नाम से जाने जाते थे, उनके बाद में वो आचार्य बने, उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की, वही विट्ठलनाथ या विट्ठलेश्वर जिनके घर में एक महीने गोपाल जी रहे थे और जहाँ की रूप गोस्वामी आदि गोपाल जी का दर्शन करने गए थे। तो विट्ठलेश्वर रहे, जब चैतन्य महाप्रभु गोपाल जी का दर्शन करने आए थे तो श्रील प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में बताते हैं कि विट्ठल नाथ या विट्ठलेश्वर का जन्म नहीं हुआ था। और जब रूप गोस्वामी विट्ठल नाथ के घर में गए गोपाल जी का दर्शन करने के लिए तो उस समय रूप गोस्वामी बहुत वृद्ध थे। विट्ठल नाथ जी के भी कई भक्त थे, उनमें से एक पुत्र थे उनकी कई उनमें से एक पुत्र थे जिनका नाम था गोकुलेश्वर या गोकुलनाथ। विट्ठलनाथ के बाद वो आचार्य बने वल्लभ संप्रदाय के, उन्होंने सेवा स्वीकार की। और ऐसे बताया जाता है कि गोकुलनाथ के समय मुगलों का मुसलमानों का आक्रमण बड़े तीव्रता से हुआ गोवर्धन के ऊपर, और उस समय सारे वैष्णवों ने सोचा कि गोपाल जी को हर बार इधर उधर छुपाना, कहीं इधर उधर कोई हमेशा के लिए एक कोई उपाय ढूंढ निकालना चाहिए, ये कब तक चलेगा। हर बार कोई अफवाह आती है, कोई खबर मिलती है तो यहाँ किसी के घर में छुपा लेते हैं गोपाल जी को, ऐसे कहाँ तक कब तक चलेगा। तो कहीं ऐसे दूर एक स्थान में ले जाना चाहिए गोपाल जी को जहाँ कि वो सुरक्षित रहेंगे और बड़े अच्छे ढंग से सुचारू रूप से उनकी सेवा हो पाएगी। तो फिर सारे वैष्णवों ने गोपाल जी को ले आना शुरू कर दिया, राजस्थान में चले आए और एक स्थान से दूसरे स्थान में आए। लेकिन यहाँ इस स्थान में नज़दीक आने के बाद जिस गाड़ी में वो लेकर आ रहे थे बैलगाड़ी में, उसके चक्के फंस गए और उठे नहीं वहां से। तो भक्तों ने सोचा कि शायद ये गोपाल जी की इच्छा है कि वो यहीं रहना चाहते हैं। उसके बाद वो यहीं पर रहे, गोकुलनाथ जी ने यहाँ सेवा प्रारंभ की और उसके बाद उनके वंशज जो हैं वो सेवा चालू जारी रख रहे हैं। तो आज यहाँ जो सेवक हैं वो सब वल्लभ संप्रदाय के हैं और उनमें से ऐसे थोड़े हैं जो वंशज हैं वल्लभाचार्य के, सब गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ वंशावली है यहाँ। इस तरह से श्रीनाथ जी या गोकुल या गोपाल जी गोवर्धन से यहाँ आए और उस समय के बाद अब लगभग 400 वर्ष तो हो चुके होंगे। तो लगभग 400 वर्षों से यहाँ पर नाथद्वारा में यहाँ सेवा पूजा बड़े अच्छे ढंग से चल रही है। तो प्रश्न ये आता है कि माधवेंद्र पुरी ने गोपाल जी को ढूंढ निकाला गोपाल जी के आदेश अनुसार, परंतु माधवेंद्र पुरी ने गोपाल जी को प्रकट तो नहीं कराया, गोपाल जी की मूर्ति पहले से थी, तो ये आई कहां से, इसके पहले क्या हो रहा था। तो ऐसे बताया जाता है कि कई लोग कहते हैं वल्लभ संप्रदाय में ऐसे मानते हैं कि ये स्वयंभू मूर्ति है जो गोवर्धन पर्वत से ही प्रकट हुई। कई मानते हैं कि ये मूर्ति वज्रनाभ ने बनाई थी। वज्रनाभ जी कौन थे? वज्रनाभ जी थे अनिरुद्ध के पुत्र। अनिरुद्ध कौन थे? प्रद्युम्न के पुत्र। प्रद्युम्न कौन थे? श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र। इस तरह से वज्रनाभ श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे, पुत्र पौत्र प्रपौत्र। और हुआ ये कि द्वारका लीला समाप्त जब हुई, और इसकी चर्चा हम द्वारका में जाके करेंगे, तो श्री कृष्ण स्वधाम चले गए। यदुवासियों का, यदुकुल के सदस्यों की हत्या हो गई आपस में लड़ झगड़ के, एक दूसरे की हत्या कर दी भगवान की योजना से, तो अर्जुन वहां पर थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण के रानियों की रक्षा की और उनको साथ में ले गए, साथ साथ वज्रनाभ भी थे उस समय जो बहुत छोटे थे, वहां से वज्रनाभ को भी ले आए इंद्रप्रस्थ। और जब समय आया कि पांडवों ने वानप्रस्थ स्वीकार किया, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर आदि छोड़कर वो हिमालय की ओर निकल पड़े, इसके पहले महाराज युधिष्ठिर ने परीक्षित राजा को राजगद्दी पर बिठाया, राजाभिषेक हुआ और फिर पांडव जो है द्रौपदी के साथ हिमालय में चले गए। उधर राजा परीक्षित बड़े अच्छे ढंग से राज्य कर रहे थे। उन्होंने वज्रनाभ की दशा क्या है, वज्रनाभ कैसे हैं, ये जानना चाहा। वानप्रस्थ लेने के पहले अर्जुन ने वज्रनाभ को मथुरा का राजा ऐसे घोषित कर दिया था, राज्याभिषेक भी करवा दिया था। तो वज्रनाभ को द्वारका से यहां ले आए, क्योंकि द्वारका अब रहा नहीं वहां, तो मथुरा के राजा हैं वज्रनाभ, ऐसी घोषणा कर ली। तो वज्रनाभ कैसे हैं ये पूछताछ करने के लिए राजा परीक्षित चले आए मथुरा। तो वज्रनाभ के लिए राजा परीक्षित पिता तुल्य थे, तो बहुत प्रसन्न हुए उनको देखकर वज्रनाभ। शहर के बाहर आए उनका स्वागत करने के लिए, जब उन्हें पता चला कि राजा परीक्षित पधार रहे हैं, तो दंडवत प्रणाम किया राजा परीक्षित को। परीक्षित महाराज ने वज्रनाभ का आलिंगन किया और हालचाल पूछा कि आप कैसे हो। तो वज्रनाभ ने कहा, आपकी सुरक्षा में तो हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि देखो, आप के जो परदादा हैं श्री कृष्ण हैं, उन्होंने हमारे वंश की रक्षा की और स्वयं मेरी रक्षा की। आज वो नहीं होते तो हमारा वंश आज नहीं रहता, इसलिए हम लोगों का ऋण यदु वंश के निवासियों के प्रति या सदस्यों के प्रति बहुत गहरा है। तो मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, बताओ। तो वज्रनाभ ने कहा कि वैसे मैं भी आप सबके बहुत ऋण हूं, क्योंकि आपके दादा, आपके पिता आदि के, आपके पुत्र आदि के कारण मुझे धनुर्विद्या में प्रशिक्षण मिला है और आपकी रक्षा में हम अब हैं यहां पर। तो सब कुछ कुशल मंगल है, फिर भी एक बात का दुख मेरे जीवन में है। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि क्या दुख है, तो उन्होंने कहा कि मैं यहां मथुरा का राजा तो हूं, लेकिन यहां प्रजा ही नहीं है। मथुरा की प्रजा गई कहां, हमें पता नहीं। आपको तो पता है कि श्री कृष्ण मथुरा के निवासियों को द्वारका ले गए थे, तो मथुरा में तो कोई था नहीं। अब ये मथुरा के राजा बने, तो राजा का जब प्रजा नहीं है तो राजा क्या करेंगे। तो वज्रनाभ महाराज थोड़े दुखी थे कि कोई प्रजा ही नहीं है मेरी। तो राजा परीक्षित सोचने लग गए। उन्होंने कहा, ठीक है, शांडिल्य ऋषि यहां पास में निवास करते हैं, हम उन्हें बुलाएं, उनसे हम सुने कि आपकी समस्या का हल कैसे हो सकता है। तो शांडिल्य ऋषि ने जब सुना कि राजा परीक्षित और महाराज वज्रनाभ भी दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो वहां पर आए, तो तुरंत शांडिल्य ऋषि वहां पर पहुंचे। ये वर्णन श्रीमद् भागवत महात्म्य में पाया जाता है। तो शांडिल्य ऋषि ने हालचाल पूछा दोनों का, दोनों ने कहा ठीक ठाक है। फिर महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज वज्रनाभ की एक समस्या है, तो उसका समाधान आप कर दें कृपा करके। तो क्या समस्या है, पूछा उन्होंने। यहां मथुरा की प्रजा कहां गई? तो शांडिल्य ऋषि ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो उनके जो संगी हैं, उनके जो पार्षद हैं, वो तीन वर्गों में थे। एक वर्ग वो थे जो नित्य सिद्ध भक्त थे, उनके जो उनके धाम से उनके साथ में अवतीर्ण होकर आए थे, और जब श्री कृष्ण स्वधाम लौट के गए तो ये नित्य सिद्ध पार्षद भी उनके साथ में चले गए। दूसरे वर्ग थे वो साधन सिद्ध भक्त, जो भगवान के धाम से आए नहीं थे, परंतु इस भौतिक सृष्टि में, विशेष रूप से इस पृथ्वी लोक के ऊपर तपस्या और भक्ति कर करके अनेक जन्मों से अब इस योग्य बने थे कि वो श्री कृष्ण के निजी सानिध्य को प्राप्त कर सकें, उनके संग में रह सकें, उनकी लीलाओं में शामिल हो सकें। तो इन्होंने भी सिद्धि प्राप्त कर ली है, और जब श्री कृष्ण स्वधाम चले गए तो इनको भी आध्यात्मिक देह प्राप्त हुआ और वो भी कृष्ण के लोक में चले गए। तीसरा वर्ग वो था जो देवतागण थे, जिनको की आदेश मिला था श्री कृष्ण के द्वारा कि जब मैं अवतार लेने लूंगा, आप लोग यदुकुल में जन्म लेना मेरी सहायता करने के लिए। आपको याद होगा कि देवता गण क्षीर सागर के तट में गए थे ब्रह्मा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने के लिए कि आप अवतीर्ण हो जाइए, पृथ्वी माता को बोझ सहन नहीं हो पा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने, क्षीर उदकशायी विष्णु ने आदेश दिया था कि मैं शीघ्र ही अवतार लूंगा, लेकिन आप भी वहां यदुकुल में प्रकट हो जाना। तो ये जो यदुकुल के सदस्य थे, जो स्वर्गलोक से आए थे, देवलोक से, वो वापस अपने अपने लोकों में चले गए, अपने जो जिम्मेदारियां हैं सृष्टि के व्यवस्थापन में उनको संभालने के लिए वापस चले गए, परंतु वो शुद्ध भक्त होकर चले गए। इसलिए अब कोई रहा नहीं। परंतु हे महाराज वज्रनाभ, कोई चिंता की बात नहीं है, पुनः ये मथुरा बहुत ऐश्वर्यशाली नगरी बन जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा कि ये व्रज भूमि की विशेषता क्या है, इसका महात्म्य क्या है। इस भूमि को व्रज कहते हैं, व्रज भूमि। तो ये व्रज क्यों कहा जाता है? आप तो जानते हैं कि व्रज संस्कृत शब्द में, संस्कृत शब्द है ये, इसका अर्थ है जाना। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में जाओ। तो जाना, तो किसका जाना? गायों का जाना। जब गाय इधर उधर चरती हैं, तो क्योंकि ये एक विशाल गोचर भूमि है, इसलिए इसे व्रज भूमि कहते हैं। ये एक अर्थ है। परंतु शांडिल्य ऋषि ने एक और अर्थ बताया। उन्होंने कहा, व्रज की भूमि का अर्थ है सर्वव्यापी, क्योंकि ये धाम सदैव आध्यात्मिक रहता है, इसका प्राकट्य बड़ा सुंदर और आध्यात्मिक रहता है, शाश्वत रहता है ये, इसलिए ये सर्वव्यापी है। ये पूरी तरह से भौतिक सृष्टि में रहते हुए भी भौतिक सृष्टि से स्पर्श नहीं करता, ये सदैव आध्यात्मिक ही रहता है, तीन गुणों से परे रहता है। यहां जो भी लीलाएं होती हैं भगवान श्री कृष्ण की, वो दिव्य होती हैं, तीन गुणों के अंतर्गत वो कार्य नहीं होते हैं भगवान के। इसलिए इस पावन व्रज भूमि में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न लीलाएं की थीं, लीलाओं के आधार पर उन स्थानों को अलग अलग नाम देते जाना। कहां भगवान की कौन सी लीला हुई, मेरी कृपा से आपको पता चल जाएगा। जैसे जहां भगवान ने एक लीला की, उस लीला के हिसाब से वहां उस जगह को नाम दे देना। साथ साथ आप यहां ऐसे विग्रहों की स्थापना करना जो सब जगह सारे ब्रजभूमि में रहेंगी और जिनके वजह से सारे व्रज में कृष्ण का स्मरण आसानी से सबको हो पाएगा। व्रज भूमि में एक ऐसे वातावरण निर्माण करो कि जो भी यहां आए कृष्ण को कभी भी भूले नहीं। किसी भी हालत में कृष्ण यहां सर्वव्यापी होने चाहिए, कण कण में कृष्ण होने चाहिए, हैं भी और ऐसे प्रतीत भी होना चाहिए। तो वज्रनाभ ने अनेक मूर्तियों की स्थापना की और जिस पत्थर से ये मूर्तियां बनी इनको ब्रज कहते हैं। ये पत्थर का नाम भी ब्रज है क्योंकि ये बड़े विशेष पत्थर है, काले रंग का पत्थर है। कभी कभी कोई भक्त पूछते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी संस्था में कभी कभी कृष्ण की मूर्ति सफेद रंग की होती है तो कभी काले रंग की होती है, इसके पीछे क्या कारण है। कारण बहुत सरल है, मूर्ति काली होती है जब पत्थर काला होता है, मूर्ति सफेद होती है जब पत्थर सफेद होती है, बस। और कोई ऐसे गुह्य सूक्ष्म कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये जो महत्वपूर्ण श्री कृष्ण के मूर्तियां हैं जिनको कि वज्रनाभ ने बनवाए वो सब काले रंग के हैं क्योंकि काले ब्रज नाम के पत्थर से बने गए थे। 16 ऐसे लोग कहते हैं कि 16 मूर्तियों की स्थापना वज्रनाभ ने की थी। उनमें से दो गोपाल जी हैं, दो गोपाल हैं, एक है मदन गोपाल। मदन गोपाल आगे चल के मदन मोहन बने, सनातन गोस्वामी के मदन मोहन, और वो आज जयपुर के पास करौली में विराजमान हैं। और दूसरे गोपाल हैं साक्षी गोपाल, जो पहले वृंदावन में हुआ करते थे परंतु अब वो कटक शहर में, उड़ीसा में, कटक शहर के बाहर साक्षी गोपाल नाम के गांव में विराजमान हैं। साक्षी गोपाल की कथा तो आप सब जानते ही हैं। तो ये व्रज के दो गोपाल हैं, व्रज के दो नाथ भी हैं, और एक नाथ है गोपीनाथ और दूसरे नाथ हैं श्रीनाथ। तो गोपीनाथ जी अब जयपुर में हैं। सारे जो मूल मूर्तियां हैं जो जिनकी स्थापना वज्रनाभ ने की वो सारे के सारे प्राय वृंदावन के बाहर हैं अब, सिवाय वृंदा देवी जो काम्य वन में हैं। इनके अतिरिक्त और जितने भी कृष्ण के और मूर्तियां हैं वो सब बाहर ले जाए गए राजस्थान में या यहां वहां, और श्रीनाथ वो तो यहां पर आए नाथद्वारा में। चार देव हैं, केशव देव जो मथुरा में हैं, हरि देव जिनका उल्लेख हमने किया पहले जो गोवर्धन में हैं, बलदेव जो बलदेव नाम के गांव में निवास करते हैं, और गोविंद देव जो कि वृंदावन में निवास करते हैं। तो दो गोपाल, दो नाथ, चार देव, साथ साथ में महादेव भी हैं पांच, चार देवियां भी हैं। तो ऐसे वज्रनाभ ने अनेक मूर्तियों को बनवाया और उनकी स्थापना की जगह जगह। इसलिए जो संस्कृति आज व्रज में पाई जाती है उसका श्रेय जो है ये विशेष रूप से वज्रनाभ को जाता है। तो आज यहाँ मूर्ति है श्रीनाथ जी की, हालांकि भिन्न मत है, कोई कहते हैं वज्रनाभ, कोई कहते हैं स्वयं प्रकट हुए थे, परंतु इतिहास संक्षिप्त में ये ऐसा है। खैर, अब यहां गोपाल जी जो श्रीनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ऐश्वर्य से उनकी पूजा यहाँ होती है। दुनिया भर से भक्त आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं। हमारा भी सौभाग्य रहा है कि हम यहाँ आ चुके हैं। हमने आज सुबह जाके दर्शन कर लिया श्रीनाथ जी का, गोपाल जी का। तो हम भी ऐसे ही प्रार्थना करें कि वो ऊंचा हाथ जो है उनका बायां हाथ, वो भी हमारी रक्षा करे। किस चीज की रक्षा करे? हमारे धन की, हमारी प्रतिष्ठा की, हमारे इंद्रिय तृप्ति की, हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे भक्ति की। तो हम जाते जाते गोपाल जी से, श्रीनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने अपने बाएं हाथ के छोटे उंगली से गोवर्धन धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की, उसी तरह से उस छोटे उंगली से, बाएं हाथ के छोटे उंगली से हमारी भक्ति की रक्षा करें और हमें पूर्ण आश्रय प्रदान करें। श्री गोपाल जी की जय। श्री नाथ जी भगवान की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। तो अब हम निकलने वाले हैं, थोड़ी देर में सूचनाएं अब होंगी। हम अहमदाबाद जाएंगे, वहां रात को देर से पहुंचेंगे। कल सुबह सुबह हमें द्वारका के लिए अहमदाबाद से निकलना है, लेकिन समय मिले तो अहमदाबाद के रास्ते में श्यामला जी का मंदिर पड़ता है और वहां से डाकोर सिंह आधे समय बस बाहर 2 मिनट के लिए रुके थे हम लोग, परंतु आपने दर्शन नहीं किया था। ये भी एक काफी पुराना मंदिर है। वैसे कहा जाता है कि 1500 साल पहले ये मूर्ति प्रकट हुई थी, वो बहुत एक पावन भूमि मानी जाती है। वो स्थल पुराण है जो किंवदंती है, वहां की लोक कथाएं परंपरा अनुसार आती हैं। उनमें ये बताया जाता है कि ये बहुत पावन भूमि मानी जाती थी और ब्रह्मा जी भी वहां तपस्या करने आए थे और शिव जी के द्वारा वरदान उनको प्राप्त हुआ था। और यहाँ पे श्यामला जी अर्थात गदाधर विष्णु, उनकी मूर्ति है, बहुत पुरानी है, काले पत्थर में वो भी बनी है, बहुत सुंदर मूर्ति है, चतुर्भुज रूप है भगवान का। ऐसे कहा जाता है कि एक आदिवासी, वो आदिवासी प्रांत है, तो एक आदिवासी जब कुछ खेत में कुछ कर रहा था तो उसे ये मूर्ति मिल गई, तो उसने स्थापना कर दी। फिर आगे चल के बहुत प्रसिद्ध मूर्ति हो गई और सारे इलाके में बहुत प्रसिद्ध है। आज सरकार के द्वारा वो बहुत बड़ा एक उसको स्वरूप दिया जा रहा है, इसलिए निर्माण कार्य काफी चल रहा है वहां पे। एक बड़ा पर्यटक, पर्यटकों के लिए पर्यटन विभाग की ओर से ये कुछ मरम्मत आदि चल रही है, निर्माण कार्य चल रहा है। और मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो भी बहुत अच्छा है। रामायण महाभारत के कई जो दृश्य हैं वहाँ बाहर दीवारों पे हम देख सकते हैं, अनेक दृश्य हैं, लीलाएं हैं इन दोनों ग्रंथों से। तो ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है इस भाग में, गुजरात में, श्यामला जी का। तो यदि समय हो तो हम वहाँ जल्दी से जाएंगे, जल्दी उतरेंगे बसों से, दर्शन करके 2-5 मिनट वहाँ रहेंगे, ज्यादा समय नहीं, और जल्दी से हमारे बसों में चले आएंगे ताकि अहमदाबाद पहुंचते पहुंचते ज्यादा देर ना हो जाए। हरे कृष्णा।